हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर 17 टेक्स्ट नंबर 28। इस आध्यात्मिक ज्ञान को ग्रहण करने के लिए कृपा की आवश्यकता है, तो हृदय की समस्त मलिनता, सांसारिक आसक्ति और बुद्धि के समस्त भौतिक विचारों का परित्याग करके पूर्ण श्रद्धा और एकाग्र मन से मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन करने वाले हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यम् ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे अहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन्वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातम् सह कणरघुनाथ वितन्तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम्। श्रीराधा कृष्णपादम् सहकणललिता श्रीविशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपति गोपेश गोपीक कांता श्रीराधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचनम गारंगे श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानो सुत देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैतं गदाधारं शिवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता मात की जय हो। संसार में मनुष्य कोई भी कार्य करता है तो उसके पीछे यह लक्ष्य होता है कि या तो वो इस कार्य के जरिए सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, सुख प्राप्त करना चाहता है, या फिर परम गति को प्राप्त करना चाहता है। जब भगवान श्री कृष्ण ने 16.23 में अर्जुन को यह बताया कि यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारत न स सिद्धिम् अवाप्नोति न सुखम् न परम गतिम्। कि जो शास्त्रों के आदेश की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे ना तो सिद्धि न सुख और ना ही परम गति प्राप्त होती है। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधानों के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या कर्तव्य नहीं है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर ही कर्म करना चाहिए, जिससे वह क्रमशः ऊपर उठे, यानी कि जिससे वो सिद्धि, परम गति और सुख को प्राप्त कर सके। जब अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के मुखारविंद से यह वाक्य सुने, तो फिर अर्जुन के मन में यह संशय उत्पन्न हुआ कि यहाँ पर तो कितने सारे लोग हैं जो शास्त्र के विधि विधानों का ना पालन नहीं करते और मनमाने ढंग से कार्य करते हैं। तो अर्जुन ने 70वें अध्याय चैप्टर नंबर 17 के पहले श्लोक में भगवान से पूछा, ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ति श्रद्धयान्विता तेषां निष्ठा तु का कृष्णं सत्वं आहो रजस्तमः। अर्जुन ने कहा, कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन नहीं करते, अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्तुति कौन सी होती है? वे सत्वगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी है? वो श्रद्धा से पूजा करते हैं। अब क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने 4.39 में पहले बता दिया था, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयते इंद्रिय ज्ञानम लब्धा परम शांति आचरण आदि गच्छति। श्रद्धा वाले को शांति मिलेगी और परम गति मिलेगी। और यहाँ पर जब भगवान ने कहा कि जो शास्त्रों के अनुसार कार्य नहीं करेंगे, उसे शांति भी नहीं मिलेगी, परम गति भी मिलेगी, तो ट्विंस हो गया, समझ में नहीं आया। तो इसलिए अर्जुन पूछ रहा था कि वो श्रद्धा कौन सी होती है जो शास्त्रों के अनुसार नहीं होती है, लेकिन होती अच्छी श्रद्धा है, श्रद्धा से कर रहे होते हैं लेकिन शास्त्रों के अनुसार नहीं होती है। तो फिर भगवान ने बहुत सुंदर उत्तर दिया श्लोक नंबर 2 में, त्रिविधा भवति श्रद्धा, देही नाम सा स्वभावजा, सात्विकी राजसी चैव, तामसी चेति तामसो। कि जो श्रद्धा जिसकी आप बात कर रहे हो ना, जो शास्त्रों के अनुसार नहीं होती है, वो आपको कभी भी आपके लक्ष्य तक नहीं पहुंचाएगी। क्योंकि लक्ष्य क्या है? धर्मस्य या पवर्गस्य। लक्ष्य क्या है? इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूट जाना। लक्ष्य क्या है? ऐसी जगह को प्राप्त करना जहां से वापस आपको जन्म मरण के चक्कर में वापस नहीं आना पड़े। लक्ष्य क्या है? कृष्ण प्राप्ति। तो जब तक आपकी श्रद्धा शास्त्रानुसार नहीं है, शुद्ध सात्विक नहीं है, तो वो कौन सी होगी? सात्विकी होगी, राजसी होगी या तामसी होगी। और भगवान ने उसके विषय में बताया कि यजन्ते सात्विकान् देवान् यक्षरक्षा राजसा प्रेतान् भूता गणा सैन्य यजन्ते तामसा जना। जो सात्विकी है वो देवताओं की पूजा करते हैं, यक्षों और राक्षसों की जो पूजा करते हैं उनका राजसी स्वभाव है, और जो तामसी होते हैं वो भूते और पुरतों की पूजा करते हैं। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने श्लोक नंबर 5 और 6 में ये बात को क्लियर किया, अशास्त्र विहितं गौरं तप्यन्ते ये तपोजना दम्बाहंकार संयुक्ता कामराग बलान्विता कर्षन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतस मां शैवान्त शरीरस्थं तान विद्या सुरनिश्चयान। जो लोग दम्भ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विधि के विरुद्ध, जो शास्त्र में नहीं लिखा हुआ उसके विरुद्ध कठोर तपस्या करते हैं, व्रत करते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा जो शरीर के भौतिक तत्वों यानी शरीर को, शरीर के भीतर बैठी हुई आत्मा को, और साथ में क्योंकि मैं भी उसी शरीर में रहता हूँ तो परमात्मा को भी कष्ट पहुंचाते हैं, वह आसुरी हैं। और वो कष्ट पहुंचाते हैं क्यों? ताकि वो किसी और का की हानि चाहते हैं, दूसरों को दुख या तकलीफ पहुंचाना चाहते हैं। और ऐसे जो आसुरी भगवान ने साफ कहा है, तान विद्या सूर्य निश्चयान, उसको निश्चय रूप से आसुरी जानो। और भगवान ने 16.20 में बताया था, आसुरी योनि मापन्नम मूढ़ा जन्मनी जन्मनी, ऐसे मूढ़ होते हैं, उन्हें कभी भी मेरी प्राप्ति नहीं होती। माम अप्राप्य कौनते ततो यान्ते धमाम गतिम, ऐसे तो अधम गति में चले जाते हैं, वो कभी भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। उसके बाद भगवान ने तीन प्रकार के आहार के विषय में बताया जो हम खाते हैं, और जिससे क्या भगवान श्री कृष्ण ने कहा 17.7 में भगवान बता रहे हैं, आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रिय यज्ञ तपस्तथा दानम तेषां भेदितुम भेदिमम शृणु। भगवान ने कहा कि यज्ञ तपस्या और आहार दान, ये सब तीन टाइप के होते हैं। ऐसा मत समझना कि आप किसी भी तरह से यज्ञ करोगे, किसी भी तरह से दान दोगे, तपस्या करोगे, तो वो आपको वैसा ही फल देगी। उसको हमें शास्त्रों के अनुसार खाना चाहिए, शास्त्रों के अनुसार भोजन कर यज्ञ करना चाहिए, दान देना चाहिए, और तपस्या भी शास्त्रों के अनुसार ही करनी चाहिए। और शास्त्रों का मत है ओम तत्सत। भगवान श्री कृष्ण ने श्लोक नंबर 23 में हमें बताया कि ओम तत्सत इति निर्देशो ब्राह्मणस्त्रिविदः स्मृतः ब्राह्मणस्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिता पुरा। कि सृष्टि के आदि काल में, यानी जब सृष्टि का उत्पन्न हुआ था, उस टाइम पर ओम तत्सत यह तीन शब्द परब्रह्म को सूचित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते रहे। तब से ये जो ओम तत्सत है वो जब उच्चारण होते हैं तो समझो वो सारा कार्य जो है वो भगवान की खुशी के लिए हुआ है। उसका हमें कोई भी लाभ नहीं चाहिए, ये सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के लिए किया गया है। ये तीनों सांकेतिक अभिव्यक्तियां ब्राह्मणों द्वारा वैदिक मंत्रों में उच्चारण करते समय तथा ब्राह्मणों को संतुष्ट करने के लिए, ब्रह्मा को संतुष्ट करने के लिए, यानी भगवान को संतुष्ट करने के लिए यज्ञों के समय प्रयुक्त की जाती है। और उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने बताया 17.24 में भगवान ने कहा, तस्मात् ओम इत उदाहृत्य यज्ञ दान तप क्रिया प्रवर्तन्ते विधानोक्ता सततम् ब्रह्म वादिना। यानी कि अतएव योगी जन ब्रह्म की प्राप्ति के लिए शास्त्रीय विधि के अनुसार यज्ञ दान तपस्या की समस्त क्रियाओं का शुभारंभ सदैव ओम से करते हैं, उसके बाद तत् और उसके बाद सत। लेकिन यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि चलो ठीक है, कोई सात्विक राजसी कर्म नहीं कर रहा है और रजोगुणी तमोगुणी नहीं कर रहा है, बल्कि ओम तत्सत का उच्चारण कर रहा है, लेकिन उसके अंदर उसकी कोई श्रद्धा नहीं है, भगवान पे कोई विश्वास नहीं है, प्रेम नहीं है। अब श्रद्धा नहीं है लेकिन फिर भी वो इन शब्दों का उच्चारण कर रहा होता है, तो भी क्या उसको वैसा ही फल मिलता है या कृष्ण उससे प्रसन्न होते हैं? क्योंकि यह शब्द तो भगवान को प्रसन्न करने के लिए ही उच्चारण होते हैं, तो क्या बस बोल दिया इट इज इनफ? और जो यज्ञ तपस्या दान और बलि मंत्रास का सही उच्चारण भी कर रहे हैं लेकिन उसके अंदर श्रद्धा नहीं है, भगवान साफ साफ कहते हैं 9.3 में, अश्रद्धाना पुरुषा धर्मस्यास्य परंतप अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमने। जिसके मन में मेरे प्रति, मेरे नाम के प्रति, धर्म के प्रति श्रद्धा नहीं है, वो अप्राप्य माम निवर्तन्ते, वो मुझे कभी प्राप्त नहीं कर सकता, मृत्यु संसार वर्तमानी, उसे बारंबार जन्म मरण के चक्कर में फंसना पड़ेगा। वो भले सारे कार्य कर रहा है लेकिन उसके अंदर श्रद्धा नहीं है। चैतन्य महाप्रभु श्रद्धा के विषय में बताते हैं, श्रद्धा शब्द विश्वास कोहे सुदृढ़ निश्चय कृष्ण भक्ति कोहले सर्व कर्म कृतहया। कि आप जब भगवान के लिए कुछ भी कर रहे हो, भगवान का नाम ले रहे हो, भगवान को प्रसाद अर्पण कर रहे हो, भगवान को सिर्फ दर्शन कर रहे हो, तो आपके अंदर यह श्रद्धा होनी चाहिए कि यही आपके लिए एकमात्र कल्याणकारक है। आप अगर ये कार्य कर रहे हो तो आपका कल्याण इसी से होना है। ऐसा नहीं, मन में दुविधा नहीं होनी चाहिए कि पता नहीं, मैं कभी कभी मुझे ऐसा हैरत होती है कोई है जो अक्सर मुझसे ये कहते हैं कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, लेकिन मुझे फिर भी है ना इस बात पे कभी कभी लगता है कि पता नहीं कौन सही है। हम हरे कृष्ण वाले इस तरह से आरती करते हैं भगवान की, और दूसरे लोग ऐसे ओम जय जगदीश करते हैं, कोई लोग है ना गगन में ढाल कर रहे हैं, तो कोई किस तरह कर रहे, कोई किस तरह कर रहे, मुझे समझ में नहीं आता। कभी कभी मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ कि पता नहीं हम सही हैं या वो सही हैं। मतलब आप भगवान की भक्ति कर रहे हो, भगवान से प्रेम कर रहे हो, भगवान पे तुम्हें श्रद्धा होनी चाहिए कि जो मैं प्रोसेस कर रहा हूँ, जो शास्त्र अनुसार कर रहा हूँ, जो गुरु महाराज ने मुझे बताया उस पर मुझे 100% श्रद्धा होनी चाहिए। वो रॉन्ग भी होगा ना तो आपकी श्रद्धा उसको परफेक्ट बनाती है, क्योंकि हम भगवान की सेवा सही तरह से नहीं। और ऐसे भी बोलते हैं भाई कुछ यह महामंत्र का उच्चारण करते हैं, कुछ कोई दूसरे नाम का उच्चारण करते हैं, कुछ कोई दूसरे नाम का उच्चारण करते हैं, तो यह डिसीजन कौन लेगा? वो भी तो शास्त्र अनुसार है ना, जो दूसरे नाम उच्चारण कर रहे हैं वो भी तो शास्त्रों के अनुसार, वो भी प्रमाण बताते कि भाई इस शास्त्र में ऐसे लिखा हुआ है, और हम भी प्रमाण बताते कि यह शास्त्र में महामंत्र का लिखा हुआ है। तो फिर इनमें से कुछ तो सही होगा, कुछ तो रॉन्ग होगा। लेकिन हो सकता है, चलो ठीक है मान लिया कि हो सकता है कुछ रॉन्ग भी हो, कुछ सही भी हो, लेकिन आप जो कर रहे हो आपकी उसके अंदर श्रद्धा जो है ना, ये जो श्रद्धा है ना वो पत्थर को भगवान बनने पर मजबूर कर देती है। आपकी, आपको पता है नारद मुनि ने जब उस शिकारी को भगवान राम का नाम बोलने को कहा तो वो बोला ऐसे बोलते जाओ राम 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 राम, लेकिन क्योंकि वो शिकारी था लेकिन उसको राम राम बोलना नहीं आता, वो बार बार राम बोलता राम राम, फिर बाद में उसका ऐसा हो जाता मरा 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 मरा। वो राम बोलना चाहता था लेकिन फिर भी उसके मुंह से निकलता था मरा मरा मरा। लेकिन फिर उसके गुरु महाराज नारद मुनि ने कहा चलो ठीक है तुम्हारे मुख से राम नहीं निकल रहा है तो कोई बात नहीं, तुम ऐसे ही जप करो, इट इज ओके। शब्दावली वही है, र और म को मिलाकर ही मात्रा के साथ रामा बोला जा रहा है, और ऐसे ही उसके मुख से निकल रहा था मरा मरा मरा। तो उसने इतनी श्रद्धा के साथ इस उल्टे मंत्र का ऐसे शास्त्र रामायण कहती है उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। तो उसे अपने गुरु महाराज के वचन पर इतनी श्रद्धा थी कि वो इस उल्टे नाम का जप करते करते शिकारी से वाल्मीकि बन गया। वाल्मीकि ऋषि के विषय में आप जानते हो रामायण की लीला कंप्लीट नहीं हुई, श्री राम ने अभी तक जो कार्य किया नहीं था, अभी जो फ्यूचर में होने वाला था ना वो भी उन्होंने पहले लिख लिया था। इतना उनके अंदर बल आ गया था अपने गुरु महाराज के मंत्र को श्रद्धा से जप करने के बाद। श्रद्धा होनी चाहिए हमारे अपने गुरु महाराज के ऊपर, अपने शास्त्र के ऊपर, अपने इष्ट के ऊपर, अपने कृष्ण के ऊपर पूरी श्रद्धा होनी चाहिए कि मैं ये न कहना प्रकार है मेरा कल्याण कृष्ण भक्ति से होने वाला, या महामंत्र ही मेरा कल्याण करेगा। अगर श्रद्धा नहीं है तो क्या होगा? तो भगवान श्री कृष्ण आज हमें अश्रद्धा के विषय में बताते हैं। भगवान कहते हैं चैप्टर नंबर 17 टेक्स्ट नंबर 28 अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असद्वित्युच्यते पार्थ न स तत् प्रीत्यनो इह। अश्रद्धया का मतलब होता है जो आप कर रहे हो उसके अंदर आपकी कोई श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा रहित। हुतं का मतलब है यज्ञ में आहुति किया, यानी आप यज्ञ कर रहे हो लेकिन उसमें आपका कोई श्रद्धा नहीं है, विश्वास नहीं है। दत्तम प्रदत्त यानी कुछ दे रहे हो, दान दे रहे हो। तप यानी तपस्या कर रहे हो आप, तपस्या कुछ लोग तपस्या कर रहे होते, उपवास रख रहे होते लेकिन बस टाइम पास करने के लिए या देखा देखी में कर रहे होते, उनके अंदर उसकी कोई श्रद्धा नहीं होती है। तप्तम संपन्न यानी संपन्न करते हैं, कृतम किया गया यानी कि ऐसा यज्ञ दान तपस्या जो श्रद्धा रहित होकर संपन्न किया गया है। च यानी भी, यत यानी जो, असत चाहे वो किसी के लिए भी किया गया है, वो असत है, झूठा है, आपकी श्रद्धा नहीं है तो वो भगवान स्वीकार नहीं करते हैं उसको, जिसके लिए आपने किया है तो वो स्वीकार ही नहीं कर रहे। श्रद्धा एक ऐसी चीज है जो कि स्वीकार्य है, श्रद्धा के अतिरिक्त और किसी और चीज की आवश्यकता भी नहीं है कृष्ण को। तो अगर वो श्रद्धा नहीं है उसमें तो असत, ये साफ साफ बताया, असत इत्युच्येत, यानी असत मतलब झूठा, इत्युच्येत यानी उसको कहा जाता, भगवान कहते हैं उसको असत ही कहा जाएगा। पार्थ, हे पार्थ, आगे बताया, न च तत् प्रेत्य नो इह, न मतलब कभी नहीं, च मतलब भी, तत्व प्रेत्य मरकर, यानी कि इस संसार में तो उसको कोई उससे लाभ होने वाला नहीं है और मरने के बाद भी, न च तत् प्रेत्य नो इह, ना मरकर नो इह, ना इस जीवन में। भगवान कह रहे हैं हे पार्थ, हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ दान या तपस्या के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, उसमें आपको कोई फल प्राप्त नहीं होगा। आपको श्रद्धा के साथ करना है, श्रद्धा, और श्रद्धा का मतलब मैंने आपको बताया था, सत अर्थात सत्य, और धा मतलब धारण, यानी जो शास्त्रों के अनुसार आपको बताया जा रहा है, जो गुरु महाराज जो परंपरा से आए हुए हैं वो आपको बता रहे हैं, और वो जो कार्य आप कर रहे हो, जो शास्त्र और गुरु के अनुसार कर रहे हो, उस पर उस सत्य को, उसको सत्य मानकर धारण करना, सत्य मानकर कर रहे हो, उस पर पूरा विश्वास रख रहे हो, उसको, उसके ऊपर पूरी श्रद्धा है, ये कहते हैं सत्य। और आगे भगवान ने कहा असत्युच्छेद, यानी कि अगर उसके अंदर आपकी श्रद्धा नहीं है तो वह असत कहलाता है। साफ साफ शब्द लिखे हुए हैं ट्रांसलेशन में, आप देख सकते हो, जो श्रद्धा के बिना यज्ञ तपस्या दान रूपी जो भी किया जाता है वह असत कहलाता है। और आगे बताया नच तत् प्रेत्य नो इह, ना इस जन्म में तथा अगले जन्म में, दोनों में ही वो व्यर्थ है, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप जो भी कर रहे हो अगर उसके अंदर श्रद्धा ही नहीं है तो फिर वो स्वीकार्य नहीं है, वो आपके इष्ट स्वीकार ही नहीं करेंगे। इष्ट को आपके भोज्य पदार्थ, आपके भूखे रहने पर, यज्ञ करते हैं ना उसके टाइम पर हम आहुति देते हैं, उस आहुति का भूखा नहीं है वो, दान देते हैं उसके लिए उसको कोई आवश्यकता नहीं है। तपस्या के टाइम पर हम अपने आप को जो कष्ट दे रहे हैं उसके लिए उसको कोई रुचि नहीं है आपके इष्ट को, वो उसके अंदर जो आपकी श्रद्धा है, जो प्रेम है कि मैं आपको प्रसन्न करने के लिए कर रहा हूँ, आपका इष्ट जो है, भगवान जो है, उस श्रद्धा से प्रसन्न हो रहे, ना कि आपके भूखे रहने से या आपके यज्ञ करने से या तपस्या करने से संतुष्ट हो रहे, तो उससे उसको कोई मतलब सुख नहीं मिल रहा है, उससे उसको कोई संतुष्टि नहीं हो रही है आपके इष्ट को, तो फिर वो उससे आपको कोई रिजल्ट मिलने वाला नहीं है, ना ही इस जन्म में और ना ही अगले जन्म में। भगवान कहते हैं सब व्यर्थ है। शास्त्र कहता है आपके पास जो सबसे बड़ी पूंजी है ना, जो सबसे बड़ी धरोहर है जो आपको कृष्ण से मिलाएगी, वो कुछ नहीं सिवाय श्रद्धा के। एक श्रद्धा का जो आपके पास धन है ना, वो आपका अपना है, वो आप कहीं से ला नहीं सकते। श्रद्धा होगी अदव श्रद्धा, कोई भी भक्ति जो है वो श्रद्धा से स्टार्ट होती है। श्रवण भी जब आप कर रहे हो किसी के विषय में, या भगवद गीता का श्रवण कर रहे हो, या को भगवान की लीला श्रवण कर रहे हो, या कथा में जा रहे हो, उसके अंदर भी यदि आपकी श्रद्धा है तो ही आप उसका पूरा लाभ प्राप्त कर सकते हो। ये श्रद्धा ही नहीं है तो फिर क्या फायदा। अदव श्रद्धा, ये श्रद्धा जो है आपकी अपनी होगी, उसके बाद ही आप आगे बढ़ोगे और साधु संग करोगे, लेकिन यदि आपके अंदर श्रद्धा ही नहीं है तो साधु संग अगर हो भी जाता है तो फिर आप उनको फॉलो करते हुए भजन क्रिया करोगे ही नहीं। तो ये श्रद्धा जो है उसको विकसित करना आपको किसी भी प्रकार, ये न के न प्रकार भगवान से यदि प्रार्थना करो तो ये प्रार्थना करो कि भगवान मेरे मैं कर रहा हूँ, जप कर रहा हूँ, प्रसाद अर्पण कर रहा हूँ, भगवान आपकी भक्ति कर रहा हूँ, आरती कर रहा हूँ, जब जब कार्य कर रहा हूँ, उसके अंदर मेरी श्रद्धा तीव्र कर दो कि यही कार्य मेरा कल्याण करने वाला है। यदि ऐसा नहीं है अगर श्रद्धा नहीं उत्पन्न हो रही है तो सारा का सारा व्यर्थ होने वाला है, जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा, जो कर रहे हैं सब जाया, सब व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि उससे तो हमारा इष्ट संतुष्ट होगा ही नहीं ना, जिसके अंदर हमारी श्रद्धा नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रीति से हमें इस श्लोक को समझाएंगे, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं, चाहे यज्ञ हो, दान हो या तप हो, बिना आध्यात्मिक लक्ष्य के व्यर्थ रहता है। अतएव इस श्लोक में यह घोषित किया गया है कि ऐसे कार्य कुछ सिद्ध है, यानी कि वो असत्य है जो श्रद्धा के बगैर या आध्यात्मिक लक्ष्य, आध्यात्मिक लक्ष्य वर्ड श्रील प्रभुपाद ने यूज किया है। श्रद्धा का मतलब होता है कि जो मैं ये कार्य कर रहा हूँ गुरु और शास्त्र के अनुसार, वही मुझे आध्यात्मिक लक्ष्य यानी कृष्ण प्राप्ति, जो मुझे जन्म मरण के चक्कर से छुड़ाएगा, उसके अंदर श्रद्धा यही आध्यात्मिक लक्ष्य है। लेकिन यदि वह बिना आध्यात्मिक लक्ष्य के, यानी कि इससे आप ये सोचते हो कि ये पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो हम जो आपकी श्रद्धा जो है वो इसमें पूर्ण नहीं है, तो उसको कुत्सित कहा गया यानी असत्य कहा गया। प्रत्येक कार्य कृष्ण भावनामृत में रहकर ब्रह्म के लिए किया जाना चाहिए। संपूर्ण वैदिक साहित्य में भगवान में श्रद्धा की संस्तुति की गई है। जितने भी शास्त्र हैं, आप पहले कोई भी शास्त्र उठा के देख लोगे तो उसमें यही लिखा होगा कि आपको भगवान के अंदर श्रद्धा रखनी चाहिए। तो भगवान के अंदर श्रद्धा रख के काम करना मतलब हर कार्य आप कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हो, कृष्ण को खुश करने के लिए करते हो, तो उसी को श्रद्धा कहते हैं। ऐसी श्रद्धा तथा समुचित मार्गदर्शन के बिना कोई फल प्राप्त नहीं होता, यानी कि अगर आप ऐसी श्रद्धा नहीं आपके मन में तो आपको कोई फल प्राप्त, आपको अपने भगवान में, अपने मंत्र में, अपने यज्ञ में, अपनी तपस्या में श्रद्धा ही नहीं है। आप सोच ही नहीं रहे हो कि यह मुझे आध्यात्मिक लक्ष्य प्राप्त कराएगा, सिर्फ दिखाने के लिए कर रहे हो या सिर्फ देखा देखी में कर रहे हो, तो फिर आपको वह कभी भी सफल नहीं करेगा आपके लक्ष्य को प्राप्त करने में। और भगवान ने साफ साफ कह दिया कि वो दोनों ही व्यर्थ हैं। श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं उसका कोई फल नहीं मिलेगा। समस्त वैदिक आदेशों के पालन का चरम लक्ष्य कृष्ण को जानना है। इस सिद्धांत का पालन किए बिना कोई सफल नहीं हो सकता। आप चाहे कितने ही शास्त्र पढ़ लो, ज्ञान अर्जित करना उसका मतलब क्या है कि आप कृष्ण को समझ जाओ। भगवान कहते हैं वेदेषु सर्वे अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। भगवान 15.15 में हमें बता चुके हैं कि समस्त वेदों का जानने वाला मैं हूँ, वेदों का रचयिता मैं हूँ, वेदों का लक्ष्य मैं हूँ, वेदों को पढ़ने के बाद जो समझ में आनी चाहिए वह चीज मैं हूँ, यानी कि मैं ही वेदों का लक्ष्य हूँ और मैंने ही वेदों का उत्पन्न किया। तो इसीलिए यहाँ पर श्रील प्रभुपाद जी हमें बता रहे हैं कि समस्त वैदिक आदेशों के पालन का चरम लक्ष्य कृष्ण को जानना है। वेदेश्य सर्वे अहमेव वेद्यो, सारे वेदों को जानने का मकसद मुझे जानना है। इस सिद्धांत का पालन किए बिना कोई सफल नहीं हो सकता। लेकिन अगर कोई वेद अध्ययन करता है, शास्त्रों को पढ़ रहा है, लेकिन कृष्ण को प्राप्त नहीं कर रहा है, कृष्ण को समझ नहीं रहा है, कृष्ण के अंदर उसकी श्रद्धा विकसित नहीं हो रही है, तो कोई सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, वो सारा फिजूल जा रहा है उसका। इसलिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग यही है कि मनुष्य प्रारंभ से ही किसी प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में कृष्ण भावनामृत में कार्य करे। सब प्रकार से सफल होने का यही मार्ग है। श्री प्रभुपाद जी आसान तरीका बता रहे हैं कि सारे शास्त्र सारे वेद आप पढ़ नहीं सकोगे ना, तो क्या करो, एक प्रामाणिक गुरु जिसने ये सारा ज्ञान अपने गुरुओं से सीखा है, जो प्रामाणिक वो जो संप्रदाय से परंपरा से आए हुए हैं, ऐसे गुरु के मार्गदर्शन में यदि आप कार्य करते हो, कृष्ण भावनामृत में भगवान की भक्ति स्टार्ट करते हो, तो सारे शास्त्र पढ़ने की जरूरत नहीं है। वह जो गुरु है वो आपको सब कुछ सिखा देगा कि किस तरह से करना है। बस आपको गुरु चुनते वक्त अपनी बुद्धि यूज करनी है, उसके बाद गुरु आपको कृष्ण तक पहुंचा देगा। जैसे श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि आपको नहीं खबर कोई बात नहीं, आप मेरी धोती में पकड़ लो, मैं आपको ले जाऊंगा, मैं आपको कृष्ण के धाम तक ले जाऊंगा। आप हमें श्रील प्रभुपाद के शास्त्रों पर और उनके समस्त वाक्य पर विश्वास होना चाहिए और सब प्रकार से सफल होने का यही मार्ग है। कहाँ पढ़ेंगे सारे शास्त्र, कहाँ रटेंगे सारे वेदों को, सिर्फ वो शास्त्र पढ़ना ही दुष्कर है, पढ़ नहीं सकते। अगर पढ़ लेंगे तो समझ नहीं सकते, समझ भी जाएं तो फॉलो करने के लिए हमें कितने जन्म लेने पड़ेंगे। श्रील प्रभुपाद जी हमें बहुत ही सरल और सुगम रास्ता बताते हैं, भगवान के नाम का जप करो, चार नियम का पालन करो, 16 माला को जप करो, मैं ले जाऊंगा तुम्हें कृष्ण के धाम में। श्रद्धा रखनी चाहिए हमें अपने गुरु महाराज के इन वाक्यों पर। श्री प्रभुपाद से किसी ने पूछा, क्या ये मुमकिन है कि हम एक ही जन्म में परम धाम जा सकते हैं, क्योंकि वेदों में तो ऐसे बताया कि बहुत कम टाइम है ना, एक ही जन्म में हमें कितना सारा कार्य करना पड़ेगा, क्या ये मुमकिन है? श्री प्रभुपाद से बोला कि हम एक ही जन्म में परम धाम में पहुंचे। श्री प्रभुपाद ने बोला यस इट इज पॉसिबल। फिर उन्होंने वापस दूसरा प्रश्न किया, लेकिन शास्त्रों में तो कितनी मुश्किल मुश्किल चीजें बताई गई हैं, जैसे 7:28 में भगवान ने क्या कहा, ये शाम त्वंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणा ति द्वंद्व मोह निर्मुक्तो यजन्ति मां दृढ़व्रता। जिन मनुष्यों ने पूर्व जन्मों में पुण्य कर्म किए हैं और इस जन्म में भी पुण्य कर्म किए हैं, जिनके पाप कर्मों का संपूर्ण त्यानाश हो चुका है, वे द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं और मेरी पूजा कर सकते हैं, वही मुझ तक पहुंच सकते हैं। तो इतने मुश्किल तरीके नहीं करते, सिर्फ ऐसे ही इसी जन्म में हम कैसे भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो श्री प्रभुपाद ने बोला, जब तुम शुद्ध गुरु का आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हो तो यह सारी मुश्किल चीजें आसान हो जाती हैं, आप आसानी से कर लेते हो और आपको पता ही नहीं चल रहा होता है कि सारे आपके पुण्य पुराने जन्मों के सारे पाप कर्मों के रिजल्ट खत्म हो जाते हैं और इस जन्म में कोई पाप कर्म का रिजल्ट रहता नहीं, जो आप कर रहे होते हो वो एकदम परफेक्ट होता है, क्योंकि शुद्ध गुरु हमेशा शुद्ध चीज आपको देता है, जो परंपरा से आई है वो ही। तो अगर आपके सर पर किसी शुद्ध गुरु का आशीर्वाद हो तो सारी मुश्किल चीजें आसान हो जाती है। तो फिर उन्होंने पूछा, श्रील प्रभुपाद क्या वो खुश नसीबी हमें हासिल है? श्रील प्रभुपाद ने कहा हाँ बिल्कुल, अगर मेरे कहने पर आप 16 माला जप करते हो और 4 नियम का पालन करते हो तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस एक जन्म में ही परम धाम को जा सकते हो, मैं ले जाऊंगा आपको यदि आप मेरे आदेशों का पालन करते हो। आगे श्री प्रभुपाद जी कहते हैं, बद अवस्था में लोग देवताओं भूतों या कुबेर जैसे यक्षों और राक्षसों की पूजा के प्रति आकर्षित होते हैं, यद्यपि तमोगुण रजोगुण तथा सतोगुण से श्रेष्ठ है, यानी सतोगुण जो है वो रजोगुण और तमोगुण से श्रेष्ठ है, लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करता है वह प्रकृति के इन तीनों गुणों को पार कर जाता है। यानी कि ऐसा नहीं सत्वगुण में ही रहना है हम लोगों को, क्योंकि सत्वम सुखम संजायते, सत्वगुण भी तो हमें ना बांधेगा ना सुख से। अगर देवताओं की पूजा करते हैं तो वापस देवताओं के लोकों में जाएंगे, फिर वापस क्षीण पुण्य मृत्यु लोकम अशंति। तो लेकिन जो कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है वो इन तीनों गुणों से ऊपर हो जाता है। यद्यपि क्रमिक उन्नति की विधि है, क्रमिक उन्नति की विधि है मतलब आपको सीरीज में ऊपर जाना होता है, पहले ऊपर थोड़ा जाओ, आहिस्ता आहिस्ता क्रमिक यानी रफ्ता रफ्ता आगे बढ़ना होता है, किंतु शुद्ध भक्तों की संगति से यदि कोई कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है तो यह सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। लेकिन अगर आपको किसी शुद्ध भक्त की संगति मिल जाती है, शुद्ध गुरु का साया आपके सर पर यदि हाथ रख लेता है कोई, तो फिर वह सर्वश्रेष्ठ मार्ग है, फिर आप डायरेक्ट से भगवान की भक्ति कर सकते हो उस और कृष्ण भावनामृत को स्वीकार कर सकते हो, फिर आपका समय वेस्ट नहीं होगा, उसी जन्म में जैसे हमने कहा आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। इस अध्याय में इसी की संस्तुति की गई है, इस प्रकार से सफलता पाने के लिए उपयुक्त गुरु प्राप्त करके उसके मार्गदर्शन में प्रशिक्षित प्राप्त करना चाहिए। आपको क्या करना है, बस एक उपयुक्त गुरु, उपयुक्त मतलब जिस वैसा गुरु जिसके अंदर वो सारी क्वालिटीज हो। कौन सी क्वालिटीज बताई हमने, गुरु की पहली योग्यता कि वो अपने आप को गुरु जो है वो अपने आप को भगवान ना माने बल्कि भगवान का दास माने। गुरु की दूसरी योग्यता कि गुरु कृष्ण का भक्त होना चाहिए, जरूरी है। आप गुरु जब चॉइस करते हो तो आपको देखना चाहिए कि वो गुरु किसी और का भक्त तो नहीं है कृष्ण के अतिरिक्त, क्योंकि कृष्ण को जानना, कृष्ण की भक्ति करना ही वैदेश्य सर्वे अहमेव वेद्यो, समस्त वेदों का सार यही है कि वो कृष्ण का भक्ति करना है। अगर उसको ये बात ही समझ में नहीं आई है तो खबरदार, उसको गुरु बनाना ही नहीं, सारा आपका जाया हो जाएगा। गुरु कृष्ण का भक्त होना चाहिए। नंबर तीन, गुरु की तीसरी योग्यता, वो जो उपदेश दे उस उपदेश का पहले अपने जीवन में पालन करें। नंबर चार, गुरु को अपने इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। और नंबर पांच, वो गुरु जिससे हमें ज्ञान प्राप्त करना है वो किसी न किसी संप्रदाय के अंतर्गत यानी परंपरा से आया हुआ। तो ऐसा यदि प्रमाणिक गुरु, उपयुक्त गुरु प्राप्त करके उसके निर्देशन में प्रशिक्षित प्राप्त करना चाहिए, फिर जब वो हमें जो भी निर्देशन देंगे वो परफेक्ट होंगे और वो हमें सिद्धि सुख और परम गति प्राप्त कराएंगे, तभी ब्रह्म में श्रद्धा हो सकती है। वही गुरु जो है, प्रामाणिक गुरु में यदि हमारी श्रद्धा होगी तो उसके वाक्य में भी हमें श्रद्धा हो जाएगी, और जब काल क्रम से यह श्रद्धा परिपक्व हो जाती है। देखो, शुरू में हमारे पास थोड़ी श्रद्धा होती है, लेकिन जब हम भक्तों का संग करते हैं और शुद्ध वैष्णव गुरु के आदेशानुसार हम कार्य करते हैं तो वो श्रद्धा जो है इतनी परिपक्व हो जाती है कि हमें इतना दृढ़ विश्वास, सुदृढ़ विश्वास हो जाता है कि इसके अतिरिक्त और कोई कार्य हमारा कल्याण का हो ही नहीं सकता। कृष्ण भक्ति कोयले सर्व कर्म कृत होए, मैं सारे कार्य अगर नहीं कर रहा हूं तो समझो मैं अगर कृष्ण की भक्ति कर रहा हूं और गुरु महाराज के आदेश का पालन कर रहा हूं तो इसी से मेरा कल्याण निश्चित होगा, इसी से होगा, इसी से होगा, और कोई तरीका नहीं है। परिपक्व हो जाता है तो उससे ईश्वर प्रेम कहते हैं, फिर वो प्रेम करना शुरू, वो रियल प्रेम होता है जिसमें पूरी श्रद्धा होती है। यही प्रेम समस्त जीवों का चरम लक्ष्य है। जैसे हम बोलते हैं ना कि हमें सर्व सिद्धि चरम लक्ष्य प्राप्त हो जो कि कृष्ण प्रेम है, तो वह विश्वास से, श्रद्धा से उत्पन्न होता है। और विश्वास जो होता है, श्रद्धा थोड़ी तो हमारे हृदय में अपनी होती है, लेकिन जब हम गुरु महाराज के आदेश और शुद्ध भक्तों का संग करते हैं तो वो श्रद्धा इतनी परिपक्व हो जाती है कि हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम सलसला उठता है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि सीधे कृष्ण भावनामृत ग्रहण करे। इस 17वें अध्याय का यही आदेश है। इस अध्याय में जो कुछ भी बताया गया वो सिर्फ सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के भिन्न भिन्न तरीके बताए गए, और बाद में भगवान ने कहा कि आप जो भी कार्य कर रहे हो वो अगर किसी भी गुण में रहकर कर रहे हो तो वो आपको बांधेगा, तो फिर आपको क्या करना है, वो सब कृष्ण को अर्पित करना है। और कृष्ण में यदि श्रद्धा है तभी आप सिद्धि सुख और परम गति को प्राप्त करते हो, और यही इस अध्याय का संदेश है। इति श्रीमद् भगवद् गीतासु हरि ओम तत्सत्। इति श्रीमद् भगवद् गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्ण अर्जुन संवादे श्रद्धात्रिय विभाग योगो नाम सप्तदशोध्यायः। इस प्रकार श्रीमद् भगवद् गीता के 17वें अध्याय श्रद्धा के विभाग का भक्ति वेदांत तात्पर्य समाप्त हुआ। आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। हरि बोल।